आरवी को लेकर रश्मि जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, अर्पिता जी उसके पास चली गई। उन्होंने प्यार से उसके गाल को छूकर मुस्कुराकर कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। हमने आप तक पहुंचने में देर कर दी। अगर हम पहले आपसे मिले होते तो आपकी शादी अपने बेटे से करवाकर आपको अपने घर की बहू बना लेते। कितनी प्यारी हैं आप और उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी। हमारी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे। उन्होंने अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। आरवी उन्हें जानती नहीं थी। उनकी बात सुनकर वो उन्हें हैरानी से देखने लगी। वहीं रश्मि ने झट से कहा, आंटी अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तो कहती हूँ इतनी अच्छी लड़की को अपने हाथों से जाने देने की ज़रूरत ही क्या है। शादी तो हो ही रही है, बस लड़का बदल देते हैं, आपके बेटे से शादी करवा देते हैं, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरी दोस्त की ज़िंदगी भी बर्बाद होने से बच जाएगी। आखिरी बात उसने धीरे से कहा, जिसे अर्पिता जी सुन न सकी, पर आरवी उसकी बात सुनकर उसको हैरानी से देखने लगी थी। अर्पिता जी ने उसकी पूरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली, अब तो हमने देर कर दी। इस प्यारी सी बच्ची को वरने कोई राजकुमार पहले से तैयार बैठा है। राजकुमार नहीं, राक्षस है वो। रश्मि ने उनकी बात सुनकर फिर से धीरे से कहा, पर आरवी ने फिर से उसकी बात सुन ली। अब उसने अर्पिता जी को देखते हुए पहचानने की कोशिश करते हुए कहा, आंटी मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कौन है? अरे बेटा, ये मेरी कॉलेज की दोस्त है, कल ही मार्केट में मिली तो मैंने बुला लिया, तुमसे मिलवाने ही वाली थी, अनुपमा जी ने वहां आते हुए कहा, तो आरवी उन्हें देखने लगी। अब अर्पिता जी ने अनुपमा जी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तेरी बेटी तो साक्षात माता पार्वती की छाया लगती है, कितनी मोहिनी है उसके चेहरे पर, सादगी में भी इतनी खूबसूरत लग रही है। उस पर मिश्री से मीठी बोली, काश मैं तुझसे पहले मिली होती तो मैं इस परी को अपने घर की बहू बना लेती। इतनी प्यारी बच्ची है तेरी, ये जिस घर में जाएगी उस घर को खुशियों से भर देगी। उनकी बात सुनकर अनुपमा जी मुस्कुराने लगी। उन्होंने आरवी के माथे को प्यार से चूम लिया, फिर अपने आंखों की नमी को पोंछते हुए बोली, सही कहा तुमने, बहुत प्यारी बेटी है मेरी और अब जल्दी ही ये किसी और घर की होने वाली है। उनकी नम आंखें देखकर आरवी की आंखें भी भर आईं तो उसने अपनी नजरें झुका ली। अब रजनी जी ने वहां आते हुए कहा, देखा रुला दिया ना बच्ची को, तभी कहती हूँ तुझे बात बात पर रोया मत कर, बच्ची को भी रुला दिया, चल अब हल्दी की रस्म शुरू करने का मुहूर्त हो गया है। अनुपमा जी ने हाँ में सर हिलाया और सब स्टेज की तरफ बढ़ गए। आरवी को दीवान पर बिठाया गया, फिर अनुपमा जी ने अर्पिता जी को देखकर मुस्कुराकर कहा, अर्पिता मेरी तरफ से मेरी बेटी की हल्दी की शुरुआत तू कर दे। उनकी बात सुनकर आरवी ने नजरें उठाकर उन्हें देखा तो उन्होंने अपनी उदासी छुपाते हुए कहा, ऐसे शुभ काम में विधवा की छाया पड़ना अभिशुगुन होता है बेटा। माँ, आरवी ने भारी गले से कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही अर्पिता जी ने मुस्कुराकर कहा, गलत कहा तूने अनु, दुनिया की किसी माँ की छाया उसके बच्चे के लिए अभिशुगुन हो ही नहीं सकती। आरवी तेरी बेटी है, तूने पाला है उसे, उसको सबसे पहले हल्दी लगाने का हक तेरा है। जो तूने कहा अब वो बात बहुत पुरानी हो गई है, वक्त के साथ इन दकियानुसी विचारधारा को भी बदला जाना चाहिए। उनकी बात सुनकर वहां कानाफूसी शुरू हो गई। पड़ोस की एक औरत से हल्के गुस्से से कहना शुरू किया, माफ कीजिएगा बहन जी, पर हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, आप यहाँ की नहीं लगती, हमने पहले कभी आपको देखा भी नहीं है, पहनावे से तो आप बड़े घर की लगती हैं, इसलिए शायद आप ऐसी बातें कर रही हैं। आपके यहाँ इन बातों का कोई मतलब नहीं होगा, पर हमारे यहाँ इन बातों की बहुत मान्यता है। आपको नहीं पता विधवा का साया भी अगर किसी शुभ काम पर पड़ जाए तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है। सही कहा आपने, मैं यहाँ की नहीं हूँ, बड़े घर से आई हूँ, इसलिए शायद आपके जैसी छोटी सोच नहीं रखती। एक बेटी की रस्मों से उसकी माँ को ये कहकर दूर रखना कि वो विधवा है इसलिए उसकी छाया उसकी बेटी के लिए अभिशुगुन है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, सब तकलीफों को सहकर उसे पाला, आज उसकी छाया उसकी औलाद के लिए मनहूसियत कैसे ला सकती है? विधवा होना या सुहागन रहना इंसान के नहीं भगवान के हाथ में है, दोष उनका है तो सजा औरत को क्यों? एक माँ की दुआओं से ज्यादा प्रभावशाली और कुछ नहीं होता। एक माँ की दुआ और उसका आशीर्वाद ही है जो उसके बच्चों को हर मुसीबत से बचाता है। जिस माँ ने अपने सब दुखों को छुपाकर रखी बेटी को अकेले पाला, आज जब खुशी का पल आया तो उसे उससे दूर रखना घोर पाप है। अनुपमा माँ है आरवी की, तो वो उसके हर रस में शामिल होगी। उसे कुछ कहने से पहले एक बार खुद को उसकी जगह रखिए। अगर आप होती और आपकी बेटी की रस्मों से आपको ये कहकर दूर रखा जाता कि आप उसके लिए अभिशुगुन हैं, तो क्या करती हैं आप? कैसा लगता आपको? उनके इस सवाल पर सब औरतों के मुंह बंद हो गए, वो मुंह बनाकर चुप हो गए। तभी एक औरत ने आगे आकर कहा, बहन जी आप बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही, पर अगर आपकी इस विचार की वजह से शादी में कोई गलत होता है उसकी जिम्मेदारी लेंगी आप? भगवान ना करे अगर एक विधवा की छाया पड़ने से ये शादी टूट गई तो कौन करेगा उस बच्ची से शादी? क्या आप लेंगी इसकी जिम्मेदारी? उनका सवाल सुनकर सबकी नजरें अर्पिता जी पर टिक गईं। वो कुछ पल खामोश रहीं, फिर उन्होंने अनुपमा जी की हथेली अपनी हथेली में थामते हुए कहा, मेरा विश्वास करो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, उनमें कोई तर्क है ही नहीं, और अगर तर्क हुआ तो पुराने लोगों ने जो भी नियम बनाए हैं उनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अगर आपकी वजह से ये शादी टूट गई तो क्या आप लेंगी इसकी जिम्मेदारी? दूसरी औरत ने फिर से वही सवाल दोहराया तो अब अर्पिता जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सबकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, आप सब रूढ़िवादी सोच के नीचे दबे हुए हैं इसलिए आपको और कुछ नजर नहीं आता, पर मैं इन बातों को नहीं मानती। हाँ, लेती हूँ मैं जिम्मेदारी। अगर मेरी वजह से इस शादी में कोई भी रुकावट आई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, अगर फिर भी अगर किसी भी कारण से ये शादी टूटती है तो आरवी की शादी मैं अपने बेटे से करवाऊंगी। मैं लूंगी उसकी जिम्मेदारी और उसे खुशी खुशी अपने घर की बहू बनाकर पूरे सम्मान से उसे अपने घर लेकर जाऊंगी। क्या अभी आप लोगों के दिल में कोई शक या कोई सवाल है? उनकी बात ने सबकी जुबान बंद कर दी। रश्मि ने अब धीरे से कहा, मैं सच कहूं वैसे तो मैं इन बातों को मानती नहीं हूं, पर फिर भी आज मैं चाहती हूं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये शादी टूट जाए। फिर अपने वादे को पूरा करने के लिए अर्पिता आंटी तेरी शादी अपने बेटे से करवा देती, उस चपड़गंजू से तेरा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। रश्मि ने इतना एक्साइटेड होते हुए कहा कि आरवी उसे हैरानी से देखने लगी, पागल हो गई है क्या, ये क्या बकवास कर रही है, जानती भी है कौन है उनका बेटा? विहान से मुझे बचाने के लिए क्या तू किसी भी ऐसे गहरे लड़के से मेरी शादी करवा देगी? चल पागल, किसी ऐरे गहरे से थोड़े ना करवाऊंगी। आंटी को देख, अमीर लगती हैं और इतनी सुंदर है तो इनका बेटा भी हैंडसम होगा और आंटी का दिल भी बहुत साफ है, मतलब लड़का अच्छा ही होगा। और वैसे भी वो कोई भी क्यों ना हो, उस सुअर से शादी करने से तो अच्छा ही होगा ना कि तेरी शादी आंटी के बेटे से हो जाए। रश्मि ने झट से जवाब दिया और उसे अपनी बातों पर जरा भी पछतावा करता ना देख आरवी ने अपना सर झटका और अनुपमा जी को देखकर बोली, माँ प्लीज आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए, आप मेरी माँ भी हैं और मेरे पापा भी हैं, आप मेरे लिए मेरे भगवान हैं और भगवान का आशीर्वाद कभी किसी का अहित नहीं करता। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे हल्दी लगाने का पहला हक आपका है, अगर आप हल्दी नहीं लगाएंगी तो ये हल्दी की रस्म होगी ही नहीं।
उसकी बात सुनकर अनुपमा जी परेशान हो गई, वहीं आरवी की बात सुनकर अर्पिता जी ने मुस्कुराकर कहा, आप सच में बहुत समझदार हैं, हमें नाज है कि आप अनु की बेटी हैं। उन्होंने अब अनुपमा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें आरवी के पास लेकर चली गईं। आरवी ने उनकी हथेली को थामते हुए कहा, प्लीज माँ मेरे लिए, आपके बिना मेरी कोई खुशी कभी पूरी नहीं हो सकती। आरवी ठीक कह रही है अनु, ये सब दकियानूसी बातें हैं, इनमें कोई तर्क ही नहीं होता। अब सब बात छोड़ और आरवी को हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म का श्री गणेश कर। अर्पिता जी ने अनुपमा जी को आरवी को हल्दी लगाने के लिए कहा, वो कुछ हिचकिचाई पर फिर आरवी ने भी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने दुभी को हल्दी में डुबोया और उसके पैर घुटने और कंधे पर हल्दी लगाते हुए हल्दी की रस्म को शुरू किया। उनके बाद अर्पिता जी ने फिर रजनी जी ने आरवी को हल्दी लगाई, उसे आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद रिश्तेदारों और मोहल्ले की औरतों ने भी आगे आकर उसे हल्दी लगाई। थोड़े नाटक के बाद ही सही, पर हल्दी की रस्म पूरी हुई। उसके बाद आरवी को वापस रूम में लेकर जाया गया। नहाकर तैयार होने के बाद उसे पास के गौरी मंदिर में लेकर जाया गया। इन्हीं सब में शाम हो गई। अर्पिता जी नौकरों को वहीं छोड़ गईं और अनुपमा जी को कह दिया कि उन्हें कुछ नहीं करना है, बस ऑर्डर देना है, तो उन्होंने भी हामी भर दी। नौकरों के आने से उन्हें आराम मिल गया था, वरना सब मेहमानों के बीच वही एक टांग पर यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी कर रही थी, क्योंकि मेहमान तो बस दो काम करने आते हैं, पहला खाने और ऑर्डर चलाने, तो दूसरा कमियाँ निकालकर ताने मारने में उन्हें महारत हासिल होती है। आरवी ये देखकर खुश थी, वहीं रश्मि तो भगवान को सेट करने मतलब मनाने में लगी थी कि कुछ भी करके ये शादी टूट जाए। आज की रात आरवी की बेचैनी से कटी, आखिर उसकी आज़ादी का एक दिन खत्म हो गया था, वही हो रहा था जो वो नहीं चाहती थी, पर कर भी क्या सकती थी, रश्मि यहीं रुक गई थी। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता जी घर पहुंची तो अंशिका आकर उनके पैरों से लिपट गई और भारी गले से बोली, दादी आप बेबी को छोड़कर कहाँ चली गई थी, अंशु ने आपको बहुत मिस किया। अर्पिता जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, उसका मासूम सा चेहरा देखकर जाने क्यों उन्हें आरवी का चेहरा याद आ गया। उन्होंने मन ही मन कहा, काश कि आरवी से हम पहले मिले होते तो हम कुछ भी करके उनकी शादी शान से करवा देते, फिर आपको माँ मिल जाती। आरवी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी बहू की तलाश हमें है, जैसी माँ हम आपके लिए चाहते हैं वो सब गुण उनके अंदर मौजूद हैं, पर हमने उन तक पहुँचने में देर हो गई, अब तो उनका रिश्ता किसी और से जुड़ गया है। ये सोचते हुए वो उदास हो गई, वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो अंशु ने फिर से कहा, दादी आप कुछ कह क्यों नहीं रही, उसने बड़ी ही मासूमियत से सवाल किया। उसकी आवाज़ सुनकर अर्पिता जी अपने ख्यालों से बाहर आईं और उसके गाल को प्यार से छूते हुए बोली, सॉरी बेटा दादी किसी काम से गई थी, आप दादू के साथ थे इसलिए आपको नहीं बताया, पर अब दादी आपके पास ही रहेंगी, चलिए दादी आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाती हैं, तब तक दादी और अंशु ढेर सारी बातें भी करेंगे। अंशु खुश हो गई, अर्पिता जी ने खुद से उसके लिए और बाकी सबके लिए खाना बनाया। कुछ देर में श्वेश जी और शान भी आ गए। शान ने फ्रेश होकर पहले सुभाष जी को खाना और दवाई खिलाई, फिर उसने अंशु को खाना खिलाया। उसके बाद जब वो खुद खाना खाकर उठने लगा तो अंशु उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। शान ने हैरानी से उसे देखा तो अंशु ने क्यूट सी शक्ल बनाकर कहा, डैडू आज बेबी आपके पास सो जाए। उसकी क्यूट सी शक्ल देखकर शान को उस पर इतना प्यार आया कि उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके गाल को चूमते हुए मुस्कुराकर बोला, चलिए आज डैडी अपनी प्रिंसेस को स्टोरी सुनाकर सुलाएंगे। उसकी बात सुनकर अंशिका भी खुश हो गई। उसने अपनी छोटी छोटी बाहों को उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिया और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। शान की मुस्कान गहरी हो गई। वहीं उन दोनों को खुश देखकर अर्पिता जी और सुयश जी भी मुस्कुरा दिए। शान ने छाया को सोने को कह दिया कि आज वो अंशिका के साथ रहेगा और खुद उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। अंशिका उसके साथ बहुत कम सोती थी, वजह थी शान का काम। वो रात रात भर स्टडी रूम में काम करता रहता तो अंशिका उसके साथ नहीं सो पाती थी, पर जब कभी उसका बहुत मन करता तो वो ऐसे ही क्यूट सी हरकत करती जिससे शान को उस पर खूब प्यार आता। आज भी वही हुआ। शान उसे लेकर रूम में पहुंचा, फिर उसे लेकर बेड पर लेट गया। अंशिका उसके सीने पर सर रख कर लेट गई। शान उसे परियों की कहानी सुनाने लगा तो जल्दी ही अंशिका गहरी नींद में सो गई। शान ने उसको अच्छे से सुलाया, फिर उसको अपनी बाहों में भरते हुए उसके पास खुद भी लेट गया। उसने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अर्पिता जी ने सुयश जी को आज जो हुआ सब बताया, फिर आखिर में मायूस होकर बोली, पता है मेरा दिल आ गया है उस बच्ची पर। अगर उसका रिश्ता पक्का नहीं हुआ होता तो मैं कुछ भी करके उसे अपने घर की बहू बना लेती। बहुत प्यारी बच्ची है वो, अंशिका की जिंदगी में माँ की कमी को पूरा कर सकती है, साथ ही शान के दिल से नफरत मिटाकर उसमें प्यार भर सकती है। पर अब उसका रिश्ता पक्का हो चुका है, वो अपने में ही बोली जा रही थी, जबकि सुयश जी तो किसी और ही सोच में गुम थे। जब उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो अर्पिता जी ने उन्हें देखकर नाराजगी से कहा, क्या हुआ, आप कहाँ खोए हुए हैं? उनकी आवाज सुनकर सुयश जी ने उन्हें देखा और गहराई से कुछ सोचते हुए बोले, हम सोच रहे हैं अगर सच में शादी में कोई अड़चन आई तो आप क्या करेंगी? आप कह तो आई कि अपने बेटे से उनकी शादी करवा देंगी, पर आप ये जानती हैं कि शान इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बातें सच थोड़े ना होती हैं, और अगर गलती से ऐसा हो गया तो शान को कैसे राजी करना है ये हमें पता है, पर हम नहीं चाहते कि उस बच्ची का रिश्ता टूटे। भले ही हमें वो शान के लिए पसंद है, पर उनका रिश्ता किसी और से जुड़ चुका है और उसमें आरवी की मर्जी शामिल है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि उस प्यारी सी बच्ची को दुनिया की हर खुशी मिले, वो जहां रहे खुश रहे। उनकी बात सुनकर सुयश जी मुस्कुरा दिए। टू बी कंटिन्यूड।